कृष्ण श्री भक्तगण स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम समय और हम आठवां स्कंद जो है सातवां अध्याय ये प्रसंग चल रहा है इस वक्त और प्रश्न का शीर्षक है शिव जी द्वारा विश्वान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रुत्तम श्लोके भगवते भक्तिमवती नैष्ठिके श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्याश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थैः भद्राणि मदनोति सुहृत्सदा। ॐ अज्ञानस्थिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदार्थिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसमितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानु सतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादिगौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनति नामने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। तो ये 22वां श्लोक जो है ये अभी बोर्ड में है और श्लोक सर्वा जगता ईश्वरो बन्धमोक्षयो तन्त्वम् अर्चन्ति कुशलः प्रपन्नाति हरं गुरु त्वम् एका सर्वजगता ईश्वरो बन्धमोक्षयो तन्त्वम् अर्चन्ति कुशलः प्रपन्नाति हरं गुरु। शब्दार्थ मारे बीच बनाएंगे त्वाम एकहा निसंदेह तुम हो सर्व जगतः तीनों लोगों को ईश्वरः नियंता बंध मोक्ष हो बंधन तथा मोक्ष दोनों के तां उस नियंता को त्वां अर्चन्ति आपको पूछते हैं कुशलः धन धान्य चाहने वाले व्यक्ति प्रपन्नार्थी हरम शरणागत भक्तों के समस्त कष्टों का हरण करने वाला गुरुं जो समस्त पतितात्माओं के लिए सदउपदेशक का कार्य करें उसे। अनुवाद सुनिए, अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आप सारे विश्व के बंधन तथा मोक्ष के कारण, क्योंकि आप इसके शासक हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना में बड़े चढ़े हैं वे आपकी शरण में जाते हैं, अतएव आप उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं और आप ही उनकी मुक्ति के कारण हैं, अतएव हम आपकी पूजा करते हैं। तात्पर्य, वास्तव में विष्णु ही सारे सौभाग्य के पालन पोषण हारे हैं। यदि मनुष्य विष्णु की शरण ग्रहण करता है तो देवताओं ने शिव जी की शरण क्यों ग्रहण की? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भौतिक संसार की सृष्टि शिव जी के माध्यम से करते हैं और शिव जी विष्णु की ओर से कार्य करते हैं। जब भगवान भगवद गीता के 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में ये कहते हैं कि वे सारे जीवों के पिता हैं, अहम बीज प्रदा पिता, तो यह शिव जी के माध्यम से विष्णु द्वारा संपन्न कार्यों का द्योतक है। भगवान विष्णु सदैव भौतिक कार्यकलापों से विरक्त रहते हैं और जब उन्हें भौतिक कार्यकलाप संपन्न करने होते हैं तो वे शिव जी के माध्यम से करते हैं। अतः शिव जी की पूजा विष्णु के स्तर पर की जाती है। जब विष्णु बहिरंगा शक्ति से अछूते रहते हैं तो वे भगवान विष्णु होते हैं, किंतु जब वे उसके संपर्क में रहते हैं तो वे शिव जी के रूप में प्रकट होते हैं। टेक्निकल सा परपट है और मैनी पॉइंट्स इकट्ठे, मैं किसी एक पॉइंट पे फोकस शायद ना कर सकूं कि मैं बहुत कई सारी चीज़ें करें दिख रही थी, आई फील लाइक वट एवर आई कुड फिगर आउट माई डिग्रेस दिस। वैसे जो ये प्रसंग है जैसा आप जानते हैं कल से शुरू है तो अब ये चलेगा 35वें श्लोक तक। ये अभी भगवान शिव जी को जो है ये जो देवतागण है प्रजापति, वैसे तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ लफ्ज, तो वो इनको अभी इनकी प्रार्थना कर रहे हैं पिछले कल के श्लोक से। तो ये वाला जो ये जो सीरीज है अभी 14-15 श्लोकों की, इसमें शिव जी की का गुणगान किया गया है और जो इसमें महत्वपूर्ण बात है, जानने वाली बात है, वो ये है यहाँ पर शिव जी को का गुणगान किया गया है भगवान के गुणावतार के रूप। देयरफॉर इसी वजह से जो आप भगवान सुनेंगे, भगवान से अभिन्न सुनेंगे, तीनों चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर, सृष्टि है, विध्वंस है, पालन है, ज्योति दर्शन भगवान विष्णु का कार्य। तो यहाँ पर कई, इसमें कई श्लोक आएंगे आखिरी तक, इवन जो आखिरी श्लोक है उसमें इस तरीके से देवताओं ने प्रार्थना खत्म करी है कि जो हमें जितना हमें समझ आया है उस हिसाब से हमने आपकी प्रार्थना करी है, जितना हम आपको जानते हैं, मतलब आपको पूर्ण तरीके से तो हम भी नहीं जानते, जितना हम आपको जानते हैं उस हिसाब से 35वें श्लोक इसी तरीके से आपको मिलेगा, एज वी नो यू काइंड ऑफ इस तरीके से। तो ये एक बहुत रोचक विषय है। जैसे यहाँ पर भागवत गीता 14वें अध्याय के 4वें श्लोक का जो है प्रभुपाद ने इस पर रेफर किया है और इवन 14वें अध्याय के 4वें श्लोक का जब तात्पर्य आप पढ़ेंगे भागवत गीता में, वहाँ भी ये बारीकी नहीं है। सो अलग अलग जगहों पर जो है प्रभुपाद एक, बिकॉज अनलिमिटेड एक्सप्लेनेशन होती है शास्त्रों की, तो यहाँ पर जो है वो खुलासा किया है कि जो अहम बीज प्रतापिता जो है वो जब भगवान रेफर कर रहे होते हैं, दैट इज हिज, वो उनका कार्य, वो उनका वो रूप है, जबकि वो शिव जी की तरह वो कार्य कर रहे होते हैं, बतौर शिव जो है वो ये कार्य कर रहे होते हैं। दिखाए ना आपको, ये कहते हैं कि वे सारे जीवों के पिता हैं, तो यह शिव जी के माध्यम से विष्णु द्वारा संपन्न कार्यों का द्योतक है। तो दिस स्पेसिफिकली रेफर्स टू हिज एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ शिव। सो अभी तो क्योंकि शुरू हुआ है और आप अभी आगे आगे एक्शन आएगा पूरा, तो कोई भी मतलब जब हम मैं पिक्चर देखा करता था तब तक की भी कोई हॉलीवुड फ्लिक जो है इसके आसपास भी नहीं है जो जिस तरीके का एक्शन आगे आएगा, यानी कि फिक्शंस बनाने की कोशिश कोशिश होती है, क्योंकि फैक्ट्स में कभी ऐसा दुनिया में जो है देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ये डिवाइन और हायर प्लानेटरी सिस्टम्स का ये विषय है, जिस तरीके से अभी भिड़ेंगे एक दो अध्याय बाद देवता और असुर, तो मतलब ऐसा एक्शन पैक ड्रामा जो है वो अगर आप एक के बाद एक चैप्टर को पढ़े, बस एक एक श्लोक सुनना एक चीज़ होती है, अगर आप खुद घर पे जाके जो है वो पूरा चैप्टर पढ़े एक के बाद एक, आप किताब रख नहीं पाएंगे जब तक वो खत्म नहीं होता। ऑफिस है, नहीं है, खाना बनाया है, नहीं है, जो भी है, बिकॉज इट इज इतना ड्रामेटिक है। आप इसको इवन अभी भी जैसे चल रहा है पीछे से कि एक्चुअली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक हम भागवतम को जो है भागवतम रच बस सकता है हमारे अंदर बड़े आसानी से, इफ वी विजुअलाइज व्हाट वी रीड। जब आप आंख बंद करके इसको विजुअलाइज करें पढ़ते वक्त कि क्या हो क्या रहे, वो ज्यादा रचता बसता है, बिकॉज दैट इज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, और जो कि भगवान आपको दे रहे हैं, जो आपके साथ उनका इंटरेक्शन के नतीजे में निकल रहे हैं। जैसे टीवी सीरियल्स हैं या मूवीज भी अगर बनती हैं इन इन टॉपिक्स पे, वो अच्छा है लोगों के लिए, बिकॉज वो प्रचार के माध्यम से, इस मैसेज को भेजने के माध्यम से बहुत अच्छा है, मगर उसका एक डाउनसाइड क्या होता है, वो कई बार हमारे इमेजिनेशन को, जो कि आध्यात्मिक अनुभूति कराने में सहायक होता है, उसको रोक भी देता है। किस तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ, अगर जैसे हम लोग बचपन में, आपस से कई लोग यहाँ तो खैर बहुत एक जनरेशन बाद के डिवोटीज भी हैं, मगर जो पुराने जनरेशन के डिवोटीज हैं, अगर वो याद करके देखें, जब हम लोग 1990s में जब महाभारत आता था, पूरी सड़कें खाली हो जाती थी उस वक्त, याद है, उसमें सिर्फ DDA चलता था, और सुबह 9 से 10 जो है ना कोई दुकान खुलती थी ना कोई मकान खुलता था, तो सब कोई घर पे बैठे होते थे, बिल्कुल सन्नाटा होता था, सड़क पर लगता था कर्फ्यू हुआ हुआ, संडे इसको जब एपिसोड होता था, और वो सीरियल जो है वो बस गए थे डिवोटीज के दिमाग में। अब उसका फायदा ये हुआ कि लाइक किस तरीके एक फैला एक कॉन्शियसनेस, मगर उसका एक जो नुकसान होता है, नुकसान या ऐसा समझ लीजिए एक चीज जो आपको रोकती है, अगर मुझे आज भीष्म देव के बारे में मैं कुछ पढ़ता हूँ और मैं आँख बंद करता हूँ, तो मेरे आंखों के आगे मुकेश खन्ना आते हैं। अगर आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ, आंख बंद करता हूँ, तो मेरे सामने जो है नीतीश भारद्वाज आता है। तो उससे होता क्या है, वो लिमिट हो जाती है वो चीज, वो इमेजिनेशन। तो इसीलिए जो रीडिंग है भागवतम, वो सब्स्टिट्यूट, वो किसी का सब्स्टिट्यूट है, विजुअल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। विजुअल आपको एक एनकरेजमेंट दे सकती है, आपको इंट्रोड्यूस कर सकती है उस सब्जेक्ट पे, मगर जो विजुअलाइजेशन है, जो आपके स्पिरिचुअल, आपके आध्यात्मिक अनुभूतियों को बढ़ाती है, रिफाइन करती है, वो आपकी अपनी होती है, उस पर रुकावट भी आती है उससे। तो अगर आप ये पढ़ेंगे और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो अंडरस्टैंडिंग जो आपकी डेवलप होगी वो आपकी अपनी होगी। जब मैं आंख बंद करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण कैसे दिख, या अजीत जब वो रस्सी खींच रहे हैं, तो यू नो लाइक वैसे भी 8th canto है, तो लिखा भी है उस पर स्ट्रांग आर्म्स, भगवान का जो है मजबूत बलिष्ठ हाथों से जो है भगवान खींच रहे, क्योंकि इनके बस का नहीं हो रहा, देवताओं के और असुरों के बस का नहीं हो रहा वो मंदार पर्वत खींचने का, मतलब तब भगवान आए। तो यू नो, तो 8th canto है वैसे भी, इट्स कंपेयर टू द आर्म्स ऑफ कृष्ण एनी वेज। सो यू नो, भगवान की शक्ति जो है इस 8th canto में कई जगह पर भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तो वो इमेजिनेशन जो वो बहुत जरूरी है, वो बसता है, वो भागवतम को जो रीडिंग को है पर्सनलाइज करता है, उससे और उत्साह बढ़ता है और लगन लगती है कि हाँ हम पढ़ें उसे. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन वी रीड. सो ये चीज और वो इनिबिट करती है कि जब मैं भगवान अजीत खींच रहे हैं तो जब मैं आँख बंद करता हूँ तो देर इज अ फॉर्म ऑफ कृष्णा जो मैं देख पा रहा हूँ, पर वो फॉर्म ऑफ कृष्णा अगर मैंने पहले किसी सीरियल में देख लिया है अब वो एक चेहरा आएगा. अब उसको हटाने में इंडिविजुअल पर्सनलाइज फॉर्म लाने में दिक्कत होती है. सो बट दैट इज इम्पॉर्टेंट. श्री श्री राधा राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, गोलोकाय की जय, जगन्नाथ की जय. तो जैसे यहाँ पर और आगे इन प्रार्थनाओं में अभी आएगा कि शिव जी की जो बात हो रही है तो शिव जी के कई सारे एक्टिविटीज जो हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो अटपटे लगते हैं बहुत सारे. कि जी श्लोक बता रहे कि जी फिरना बिना किसी कपड़े के फिरना, ठीक है ना, या पार्वती जी के साथ फिरना, और पिछला कैंटो दो कैंटो पहले गई भी है वो बात जो चित्र के तुम्हारा उसका पूरा प्रसंग आता है किस तरीके से हुआ, वो भी गलत समझे या नहीं समझे वो भी चीज़ अलग है, चुमा नहीं जाते हम. मगर एक ऐसा भ्रम पैदा होता है कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, या शमशान में फिरना या राख लगा के भभूति लगा के घूमना. तो सारी चीज़ें जो आती हैं तो हालांकि जब ये श्लोकों में इसका जिक्र होगा साथ में ये भी बताया जाएगा कि जो इनकी बुनियाद पे शिव जी का जो है मूल्यांकन करते हैं वो निर्लज्ज शेमलेस वर्ड इस्तेमाल हुआ. मगर बात ये है कि मूल्यांकन करना भी जरूरी है, मूल्यांकन किया जाएगा. जब आप आचार्य हैं तो मूल्यांकन भी किया जाएगा. सो क्या उसका उसका बेसिस क्या है, किस कसौटी पर मूल्यांकन किया जाएगा? तो मूल्यांकन किया जाएगा जैसे भागवतम के दशम स्कंध के 33वें अध्याय के 29वें श्लोक में ये श्लोक आता है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है. तेजसाम न दोषाय वन्ने सर्व भुजोजथ, कि जो लोग तेजसाम जो जिनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, शक्तिमान कोई भी शक्तिशाली पुरुष, तो शक्तिशाली पुरुष का किया हुआ कार्य जो है उसमें दोष नहीं होता. किस तरीके से नहीं होता, एग्जाम्पल इमीजिएटली दिया है, वन्ने सर्व भुजो जाते, जैसे कि आग होती है उसमें जो मर्जी डालो राख हो जाएगी, पानी डालो वो भी फूक जाएगा अगर आग ज्यादा है, ठीक है ना, जो मर्जी डालो. दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आग के सामने टिक सके, आग की लपट अगर तेज है तो सब जला के राख कर देती, सब खा जाती है. जिस तरीके से कि सूरज है वो बैठा है ऊपर, आप मल मूत्र है वो सब सुखा के उसको डिटॉक्सीफाई कर देगा. तो ये शक्तिमान का मतलब इस तरह की शक्ति, तो उसके सामने जो है किया गया कोई भी कार्य जो है मायने नहीं रखता, वो हर चीज जो है एडजस्ट हो सकती है. मगर एट द सेम टाइम ये भी है कि बात ये नहीं कि वो क्या हजम कर सकता है, बात ये है कि मुसीबत तब आती है कि देखने वाला क्या हजम करता है और कितना हजम कर सकता है. तकलीफ वहां होती है कि जो देखने वाला है उस चीज को उससे वो हजम नहीं होता. तो इसीलिए दोनों चीजें देखने की जरूरत पड़ती है. अगर देखने वाला इस बात को समझे कि जो शक्तिशाली है शक्तिमान पुरुष है वो कुछ भी हजम कर सकता है, और जो वो उस तरह का कार्य कर रहा है वो भी इस चीज को मद्देनजर रखे कि देखने वाला शायद हजम ना कर सके, तो इन दोनों का जो मिलान होता है तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं फैलती और म्यूचुअल अप्रिसिएशन बढ़ सकती है. तो दोनों का समन्वय है. कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जैसे हम शिव जी का अब ये देखें जहर पीना इस तरीके से, अब कब करने पड़ते हैं, ठीक है, बड़ा आसान सा जवाब है इसका, जब जरूरत पड़ती है. अब जरूरत कब पड़ती है, क्या कौन इसका फैसला करेगा कि जरूरत है कि नहीं है? फैसला करेगा करेंगे वहां जो लोग उस वक्त वहां मौजूद हैं और अल्टीमेटली भगवान, ठीक है. जैसे यहां पर इसकी जरूरत है तो इसके लिए कौन आया, देवता है कि वो वहां थे, तुमने देखा इसकी जरूरत है, हमारे बस का नहीं, हम नहीं कर सकते. So they ask for help. तो जैसे devotees हैं तो कई बार कई चीज की मदद मांग सकते हैं कि जी हम नहीं कर सकते, आप मदद करें. और उसी तरीके से साथ ही साथ आपके सुपीरियर, जैसे यहाँ पर जो है जो आ रहा है कि भगवान विष्णु ही जो है वो कार्य कर रहे हैं शिव जी के थ्रू ये चीज. और यहाँ पर वैसे भी नॉन डिफरेंट बताया क्योंकि वन अवतार है यहाँ पर जिनकी बात हो रही. तो और आगे आप देखेंगे भी कि ही विल रिमेंबर, भगवान विष्णु को पीते वक्त ही विल रिमेंबर. सो उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो इस तरह की चीज. तो ये दो फैक्टर्स हैं कि कौन डिसाइड करेगा किस चीज की जरूरत है. वो लोग वहां पर जो जरूरत है और अल्टीमेटली भगवान और या उनके प्रतिनिधि गुरु इस तरीके से. तो अब जैसे हम ये और साथ ही साथ कि जब ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य किया जा रहा तो किन किन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है. ऐसा कोई जोखिम भरा कार्य जैसे ये है तो आप देखेंगे शिव जी आगे श्लोक में आएगा कि शिव जी पार्वती से जो है उनको इन्फॉर्म करते, प्रैक्टिकली परमिशन लेते और पार्वती जी उनको परमिशन देती है. उन्होंने क्या हुआ ये जानते हुए कि उनकी जो है काबिलियत क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकते हैं. तो ये हर जगह मतलब इवन हर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी ये चीज काम आती है. पार्टनर्स किसी भी पार्टनर्स के इसमें ये चीज काम आती है कि अगर हस्बैंड कोई काम कर रहा है तो वो वाइफ से पूछ ले, बता दे कम से कम जी ऐसा उसकी राय ले. और वाइफ भी इस बात को मद्देनजर रखते हो कि वो क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उसको जो है अपनी राय दे. नॉट दैट सिंपली कि उन्हें क्या पसंद है कि क्या नहीं पसंद है, लाइकिंग और नॉट लाइकिंग नहीं, जरूरत किस चीज की है, कैपेबिलिटी. और दो चीज हमेशा इसमें मैं समझता हूँ जो समझ मेरे को आया है पढ़ के तो वो यही था कि कौन क्या कर सकता है या कौन क्या नहीं कर सकता, ये जब इस सब की चीज की जब बात होती है ये सब सवाल खड़ा होता है तो सवाल या निशान लगता है उसकी काबिलियत पर. मगर क्या किसी को कोई चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस पे सवाल उठता है उसके कैरेक्टर पे, उसके मॉरल जजमेंट पे, उसके एथिक्स पे. तो इस पे सवाल उठता है. तो दो चीजें, दोनों चीजें जरूरी हैं कि कौन क्या कर सकता है क्या कर नहीं सकता है, ये बड़ी बात नहीं है. बड़ी बात ये है कि क्या उसको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. कौन क्या कर सकता है, जैसे हम में से हर कोई अगर चाहे तो मर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता. मर्डर करना कौन सी बड़ी बात है, मगर क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये बड़ी बात है. जो समाज में नियम है या भगवान के जो बनाए हुए कानून है वो इस पे इसलिए उसकी बुनियाद नहीं है कि कौन क्या कर सकता है कि कौन कर नहीं सकता. वो उस पर टिका हुआ है कि क्या उसको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उसकी जरूरतें हैं, क्या उसके फैक्टर्स हैं, किन सूरत हाल में किया जाएगा, किन सूरत हाल में नहीं किया जाएगा. सो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अक्सर पावर को, ताकत को, शक्ति को कुछ यूं समझते हैं कि मतलब गड़बड़ी या आप लोग हैवॉक फैलाने की काबिलियत को वो ताकत समझते हैं. इफ यू हैव एन एबिलिटी टू क्रिएट हैवॉक दे कंसिडर दैट इज पावर, दैट इज द डेमोनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शक्ति. भगवान से जो मांगते हैं कि इवन वो भी भगवान से मांगते हैं कभी अगर भूले भटके फॉर ए चेंज, या भगवान की किसी प्रतिनिधि से मांगते हैं चाहे वो ब्रह्मा है, शिव है या कोई भगवान के भक्त हैं, गुरु हो गए अपने, तो वो काबिलियत मांगते हैं कि जी मैं किस तरीके से जो है यहां पर तबाही मचाऊं. तबाही मचाने की काबिलियत को वो पावर समझते हैं, जबकि पावर का असली जो उसका ताल्लुक है वो उसका इस्तेमाल करने की जजमेंट पे है कि कहां पर किस चीज की जरूरत है, कहां पर उसको इस्तेमाल करा जा सकता है. तो डिवोटीज का जो कंसिडरेशन है वो इस कसौटी पे पहला कंसिडरेशन, एबिलिटी से पहले उसका कैरेक्टर, उसका इंप्लीकेशन, उसकी जरूरत, ये डिटरमाइन करती है कि वो ताकत डिवोटी भगवान से मांगे कि ना मांगे। मैं क्या मांग रहा हूं भगवान से, वो इसके सिर्फ इस पर निर्भर नहीं है कि मैं क्या हैंडल कर सकता हूं, वो इस पर निर्भर है कि क्या चीज की जरूरत है यहां पर, इस चीज से भगवान की भक्तों की समाज की सेवा होगी कि नहीं होगी, यहां पर वो चीज ठीक है कि नहीं ठीक है। तो क्योंकि इसी तरह जैसे हम सोच जैसे है कि ये किस तरीके से जो इस बुनियाद पर कि जी पावर इज इन एवरीथिंग और वो आ जाए तो सब कुछ जायज है, यहां पर इसलिए मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कोई इसका गलत इंप्लीकेशन निकाल सकता है, तेजी सामने दोष है तो उस पर नहीं लगता नहीं। वो पावर जब आप इस काबिलियत से कि जी हाँ मैं किसका नुकसान कर सकता हूं क्या कर सकता हूं, वो पावर जिससे मैं अंधा हो जाता हूं इट करप्ट्स, तो वो सिद्धांत फैलाता है जो कि जंगल का कानून है, इंसानी कानून नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये जंगल का कानून है, क्योंकि वहां पर ये आता है कि जी जो जिसके पास ताकत है वो ले जाए। इंसानी कानून इस पे है लिव एंड लेट लिव, इसके लिए भी ताकत चाहिए, सिविलाइज्ड वर्ल्ड इससे चलता। तेन तक तेन भुंजता मां गृता कस्य सिद्धम, इस पे चलता। मेरी ताकत दूसरे के नुकसान में नहीं है, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो शिव जी की ताकत थी वो जैपन किस लिए इस्तेमाल करें, वो चाहते तो अब उनको भेज देते हैं, आप बोलते कि जी इतना करने की आदत है ना मरवा दो उनके सामने, यसुर खड़े हैं सारे अकेले काफी तो, मगर नहीं, दैट इज मिसयूज ऑफ पावर। जब उन्होंने जहर पिया तो सिर्फ देवताओं के लिए नहीं पिया, पिया तो असुरों के लिए भी पिया। तो ये है कि कंसिडरेशन क्या है उसकी। तो इसी तरीके से आप यानी कि अगर भक्त जो है वो रिस्क ले रहे हैं भगवान के लिए तो ये रेसिप्रोकेशन भी है। तो अगर हम कोई भी भक्त जो है भगवान के लिए कोई रिस्क लेता है तो भगवान भी उसे प्रोटेक्ट करते हैं। ये था माम प्रपद्यंते का जो चीज, तो दोनों चीजें अगर वहां पर उस चीज की जरूरत है भगवान या उसके भक्त या वो सिचुएशन में डिमांड कर रही है वहां कि ये ऐसा चाहिए, और वो हर कसौटी में हर मॉरल कसौटी पे खरा उतरता है तो वो चीज करी जा सकती है और उसमें फिर भगवान की प्रोटेक्शन भी एक्सपेक्ट करी जा सकती है। सो ये सारी चीजें बैलेंस करने की लोग कैसे देखेंगे इस चीज को, बाकी जरूरत क्या है, हायर कॉज है कि नहीं है, ये जब हम यहां पर भी जो ये है अधिकार तेज या सम्य दोष है इसका एक और पहलू है जो कि कई बार गलत समझ लिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे ये हमारी अल्टीमेट कसौटी नहीं है, ये एक इंटरमीडिएट फैक्टर है कि हाँ उसको भी आप मद्देनजर रखें, मतलब लोग क्या कहेंगे ये हमारा गोल, अगर भगवान प्रसन्न भगवान भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने की बात हो रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है या उनको आगे बढ़ाने की बात, कुछ भी यानी कि जो आप उनकी सर्विस में कर रहे हैं तो उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं इज अ सेकेंडरी फैक्टर, ये है ऐसा नहीं कोई फैक्टर नहीं है, मगर अगर वो हायर कॉज के मिशन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो फिर हम उसको नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पर हम भगवान की सेवा करने जाते हैं, मान लीजिए हम कीर्तन करने सड़क पर जाते हैं, ठीक है करने जाते हैं, पर सकता बहुत लोगों को पसंद ना हो तो लोग क्या कहेंगे, तो वी आर नॉट आफ्टर पॉपुलिज्म, वॉक्स पॉपुलाई जो है ये हमारा मोटो नहीं है कि कितने वोट हमें बढ़ते हैं, हम पॉलिटिकली कितने करेक्ट हैं, तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये भी देख रहे हैं बैलेंस, दैट्स द गोल्डन रूल, कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो हमारा मिशन, तब वो मिशन को किस तरीके से लोगों के साथ एक्सेप्टेबल होकर विन विन सिचुएशन क्रिएट किया जाए ये प्रीचर की जो है की एक्सपर्टीज है, प्रचारक का जो है वो उसकी जिम्मेदारी भी है और ये कला उसको सीखने की जरूरत भी है, मगर हो सकता है हमेशा ये कलाकारी वो ना कर सके, तो फिर उस वक्त वो लोगों का नुमाइंदा नहीं है, वो भगवान का सेवक है। तो ये बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि वी आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द परंपरा। तो कई जगह पे ऐसी जरूरत हो सकती है, पुश ऑन दैट एंड विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लोगों को बात समझ भी आ जाएगी, मगर वो ये फैसला लेना कि कब ऐसा, यानी कि यानी कि जो नदी का जो बहाव है, बहाव के उल्टा चलना है, इसका फैसला जो है भक्त करेंगे, बाकी डिवोटीज करेंगे, सीनियर्स करेंगे, शास्त्र करेगा, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए। और इसकी और सबसे बड़ी बात, इन सब के का मिलान उसका जो जजमेंट है, इन सब के फलस्वरूप जो उसका जजमेंट है, वो ये सब लोग ये सब क्या करते हैं, भगवान करते, भगवान एक भगवान अपना ओपिनियन देते, शास्त्र अपना ओपिनियन देते, भक्त अपना ओपिनियन देते, गुरु अपना ओपिनियन देते, इन सबको लेके आप अपना ओपिनियन बनाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सारा है, तो अपरेंटली कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड चीज तो उसमें फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, इट्स नॉट ए सिंपल यस एंड नो, करना है कि नहीं करना है, हाँ ना यस नो, ये दीज आर इजी वंस, बट कई जगह पर ऐसे सिचुएशंस कभी क्रिएट हो सकती है, तो वहां पर लीडरशिप का जो है वो टेस्ट होता है कि किस तरीके से वो अलग अलग पहलुओं को जो है एक जैसे सूत्र मणिगणा युवा वाली बात है गाते हुए जो है अपने मिशन तक भी पहुंचे और लोगों को भी एक्सेप्टेबिलिटी बना सके या मिनिमम डैमेज हो इस तरीके से चल सके। क्योंकि जैसे है शिव जी है मिसअंडरस्टूड है, यमराज भी मिसअंडरस्टूड है, उसमें ये क्या करते हैं लोगों को नरक भेजते हैं, तो क्या करें अब सारे सबकी ओपिनियन जो है के मद्देनजर रखें नरक भेजना बंद कर दे फिर, कि जी लोग बुरा मान रहे हैं, बात समझ आ रही है, किस तरह नहीं है। ही हैज टू सी की हायर बिगर पिक्चर क्या है, भगवान क्या चल रहा है, किस चीज की, किस तरीके से भगवान का जो है मिशन आगे बढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स लेके जो है हम शिव जी जैसा जो कैरेक्टर है जहां पे हम इस तरीके के अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन देखें, तो वहां पर इस चीज को समझने की जरूरत। और इसी तरीके से जब हम ये शास्त्रों में बात करते हैं किसी एक कैरेक्टर की, तो वो कैरेक्टर सिर्फ शास्त्रों में तक सीमित नहीं होता, वो कैरेक्टर्स उसी तरह के कैरेक्टर्स आपके रियल लाइफ में भी होते, तब कैसे डील करेंगे। क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि हम में से ज्यादातर भक्तों को जो है शिव जी से डायरेक्ट डील करने की नौबत नहीं आएगी, सो वी डोंट हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ द ट्रेड टू डील विथ हिम, बट वी मे हैव टू डील विथ पीपल लाइक हिम, दोज वर पावरफुल डूइंग थिंग्स विच आर अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट्री, मत उनको इस नजर से हमें देखना, और ये है हमारा पार्ट और सामने वाले का पार्ट जो है जो इस तरीके का कोई एक मिशन सर अंजाम दे रहा है वो हमारे कंसिडरेशन को भी मद्देनजर रखे, वो तब चलते हैं। जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, डिवोटीज की बात करते हैं, वो कोऑपरेशन की बुनियाद पर चलते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं चलते। एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर चीज को पनपने में सहायक होती है। जैसे अगर कोई भी क्वालिटी मैं डेवलप करना चाहूं, मान लीजिए मैं टॉलरेंस डेवलप करना चाहूं, अक्सर इसकी बात होती है टॉलरेंस डेवलपमेंट, मैं इसी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें थी, बाकी मैं गलत हो सकता हूं करेक्ट नहीं, पर मुझे लगता है शायद मैं गलत नहीं। ये है कि जब आप लीजिए आप टॉलरेंस डेवलप करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आप उस पर एफर्ट करें, मगर जो दूसरे डिवोटीज वो आपको वो माहौल भी देता कि आप टॉलरेंस क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते, बिकॉज दैट इज वाई वी कम टू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, अदरवाइज मुझे डिवोटी एसोसिएशन की क्या जरूरत है। अगर टॉलरेंस मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बिना किसी एनवायरमेंट के नीड सपोर्ट के प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो मैं घर पर भी कर सकता हूं, हर जगह कर सकता हूं, फिर मुझे डिवोटीज की जरूरत ही नहीं। तो दोनों का मेरा अपना एफर्ट होगा, ऐसा नहीं कि मैं आ जाऊंगा यहां पर अपने आप टॉलरेंस प्रैक्टिस हो जाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं एंड आई विल रिक्वायर द नेसेसरी, दैट इज कॉल्ड द सोसाइटी एनवायरमेंट, ये डिवोटीज फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक भक्त है उसको किसी दूसरे ने पीट दिया, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको थप्पड़ मार दिया, तो उस भक्त को क्या करना चाहिए जिसको थप्पड़ मारा है, क्या हो, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल करेक्टनेस। हाँ, उसे खा लेना चाहिए, ठीक हो गया। उसके साथ में जो भक्त है उनको क्या करना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा ऐसा हो जाता है, टॉलरेट, समझ आ रही है। इसे कहते बेवकूफी, जिसको थप्पड़ मारा है वो थप्पड़ खाएगा, वो उसकी टॉलरेंस है, पर थप्पड़ खाता देख के किसी और को उसको बोलना ही टॉलरेट करना, इससे आपकी टॉलरेंस नहीं, आपकी इनटॉलरेंस बढ़ती है। ये है वो सपोर्ट। नित्यानंद प्रभु को पत्थर मारा, नित्यानंद प्रभु ने पत्थर खा लिया, महाप्रभु ने क्या किया? हाँ, तो अगर ये एग्जाम्पल साथ में, ये सपोर्ट, ये डिवोटीज का सपोर्ट, तो जब हम टॉलरेट कर रहे हैं तो हम टॉलरेट कर रहे हैं, पर जब दूसरा टॉलरेट कर रहे हैं, वी हैव टू फैसिलिटेट हिज टॉलरेंस बाय एक्टिंग अकॉर्डिंगली। ये वो एनवायरमेंट देते हैं, जिसे कहते हैं माहौल बनाना। इस तरीके से हम इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके से अपरेंट चीजें जो है हार्मोनाइज हो जाती है, कोई मुश्किल मुश्किल से मुश्किल चीज वो आसान हो सकती है, कोई चीज जो समझ नहीं आ रही है वो समझ आ सकती है। भगवान शिव का जो हम यहां पर देख रहे हैं क्रिया मुद्रा, और शास्त्र में है अभी जैसे चैतन्य चिंतामणि बोल रहा है कि वैष्णव क्रिया मुद्रा, वैष्णव है ना बुझाए नहीं है, कि कई बार इसकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत होती है कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा कोई नहीं समझ सकता, तो कोई नहीं समझ सकता तो बात ही खत्म हो गई। तो वैष्णव की क्रिया मुद्रा पजल थोड़ी होती है, वैष्णव की क्रिया मुद्रा वैष्णव के लिए होती है। इट टेक्स वन टू नो वन, द डिवोटी कैन अंडरस्टैंड द डिवोटी। सो ये है विज्ञ का मतलब है, इवन इफ समबडी इज वेरी एक्सपर्ट, विज्ञ मीन्स क्या, वेरी वेरी लर्नड स्कॉलर, मे नॉट बी अ डिवोटी, भक्त नहीं, बिकॉज हमारी जो स्ट्रेंथ है वो भक्ति को एकेडमिकली समझने में नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है भक्ति को प्रैक्टिस करने में। तो जो प्रैक्टिस करता है वो उन बारीकियों को समझ सकता है। शिव जी का कैरेक्टर प्रैक्टिशनर समझ सकते हैं, नारेबाज नहीं, वो तो बम बम बोले, वो नारेबाजी तो हिंदुस्तान में बहुत सुनी जाती है, मगर जो है उनका भोलापन, उनका बेवकूफी नहीं है, ये कौन बताएगा, ये प्रैक्टिशनर बता सकता। तो प्रैक्टिशनर के लिए वो जो सीक्रेट्स हैं वो खुल जाती है, जैसे भागवत गीता है, भागवत गीता ही ले लें आप, तो जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें से सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है वो, ठीक है, सबसे कम समझे जाने वाली है और उससे भी कम प्रैक्टिस करे जाने वाली है, इसीलिए बेहाल। ठीक, कि पढ़ने के बाद समझना और समझने के बाद प्रैक्टिस करना, तब वो सीक्रेट्स खुलते हैं। इट इज फॉर द प्रैक्टिशनर्स। सो सारे ही क्वालिटीज, सारे ही जो ये फैक्टर्स हैं, जितना प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमारी जजमेंट रिफाइन होती है, देन वी अंडरस्टैंड वट क्या सिचुएशन है, क्या मल्टीपल फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे मल्टीपल फैक्टर्स आ गए तो मल्टीपल फैक्टर्स में प्रभु जी गिव मी वन सोल्यूशन, जैसे अर्जुन था ना भागवत गीता में बोला थर्ड चैप्टर में, गिव मी वन सोल्यूशन, एकम वदम। उसके बाद भगवान का रिस्पॉन्स क्या था, 15 चैप्टर बोले उसके जवाब में, एकम वदा का ये नतीजा था, 15 चैप्टर बोले उसके बाद पूरे, क्यों, एकम वदा इज फॉर द शूद्र, मुझे एक चीज बता दो, वाई, बिकॉज ही कैनॉट मल्टीपल चीजें जज नहीं कर सकता, मल्टीपल फैक्टर्स एकोमोडेट नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण का काम, बिकॉज दैट टेक्स टॉलरेंस, दैट टेक्स हॉस्टिलिटी, मल्टीपल चीजें समझना, एक मैं एक एक बंदे के मल्टीपल पहलू समझ लो। शिव जी आशुतोष है तो गुस्सा भी आता, तीसरी आंख भी खुलती है, तो ये प्रैक्टिशनर जो उसमें अंदर घुसता है वो उसको हार्मोनाइज कर सकता है, نہیں تو جو وہ سنکی آدمی جب جی میں آیا غصہ چڑھ جاتا ہے, جب ہے دل آ جاتا ہے تو دلدار ہو جاتا ہے, جو کچھ بھی دے دیتا ہے کسی کو, بند ماں پربھو کا بھی دے سکتے ہیں, سافٹ ایکس روز ہارڈ ایس تھنڈر بولٹ, یہ کیا مطلب ہے؟ یہ تو اپوزٹس ہے نا جی, گیو می ون یا سافٹ ایس روز یا ہارڈ ایس تھنڈر بولٹ, نہیں ون نہیں ہے, ون از فار دا لیسر انٹیلیجنٹ, جس کو جو چیز اس کو سمجھ آتی ہے یا جو چیز اس کے دماغ میں گھستی ہے اس کے علاوہ کوئی بات سن لے تو گریبان پکڑ لے گا سامنے والے کو, بیکاز ہی کینٹ ٹالریٹ اپوزنگ اور پیرلل اوپینینس. یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے, ان سب کا سامنجسیہ سے کہتے ہیں بیلنس, اس کے لیے ستو گن چاہیے اور وہ پریکٹس سے آتی ہے. تو میں نے ٹاک اباؤٹ کیریکٹرس لائک شیوا اور ایسے یمرج, میں نے اچھا اور کہہ رکھے کہ برہما کے کا رول آتا ہے آگے, تھرڈ کینٹو میں جب پیچھے تھا جی, وہ بھاگے بھاگ کے پیچھے, تو اس طرح کی کئی چیزیں. یہ کیسے, سب سے بڑی بات, جن کے ہم اپاسک ہیں بھگوان سے کرشن, ہی از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ پرسن. وائی؟ ناٹ بیکاز کیریکٹر کمپلیکیٹڈ ہے, بیکاز پیپل ڈونٹ پریکٹس. بھگوان ہو پریکٹس کرشن کانشیسنیس, ان کے لیے مشکل نہیں. کرشنا پہلی کن کے لیے ہے؟ دوز ہو آر انجوکیٹڈ ان کرشن کانشیسنیس, ان کے لیے. اسی طریقے سے ڈیووٹ از لائک ہم مے بی. سو یہ جو باقی بھکت جو پریکٹس کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, اسی لیے یہ بھکتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ کمپلیکیٹڈ کیریکٹرس کو ایکسپلین کیا جائے, بھگوان کو ایکسپلین کیا جائے. اٹ از انڈرسٹوڈ وین ایکسپلین بائی دا ڈیووٹیز ہو ہیو پریکٹسڈ. سو یہ میرے کو اس شلوک سے جیسا مزہ آیا تھا, باقی آفر می کریکشنس, کوئی سوال کوئی کامنٹس جی جمع دیں.
धन्यवाद तुझे. मेरे दो तीन प्रश्न हैं, थोड़े मिलते जुलते हैं. एक पहला प्रश्न तुझे, जैसे आपने बताया कि हम वॉक्स पॉपुलर पे इतना फोकस नहीं करते, डिपेंडिंग हमारी गुरु परंपरा दैट टेक्स द प्राइमरी पोजिशन, तो मैं इसी पे थोड़ा कंटेम्पलेट कर रहा था. तो मेरे कई ऐसे पास्ट टाइम्स आ रहे थे कि जिसमें प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही डीप कंसिडरेशन लिया, कि कई बार संकीर्तन रुकवा दिया कि लोग उन्हें बेगर समझ रहे थे या चैतन्य महाप्रभु की लाइफ से भी. ऐसा कोई शास्त्रों से उदाहरण मिलता है कि हमारे आचार्यों ने वॉक्स पॉपुलर को कंसिडर नहीं किया और कोई स्टैंड लिया?
क्यों नहीं? जैसे मान लीजिए डिवोटीज जो है मंदिर में फुल टाइम हो रहे हैं, what kind of effect it gives to the popular in general? اس قوم کی سب سے زیادہ جو ہے لوگ کیا بولتے ہیں, بچے اٹھا, جوان بچے اٹھا لے جاتے. سو کیا کیا مندر میں ڈیووٹس کو آنا بند کر دیا؟ سو اٹ ڈیپینڈس, دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ آپ کا مشن جیوپرٹائز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. یہ مشن جیوپرٹائز نہیں ہو رہا تو ہمارا جو اسٹینڈ ہے, ہم کوئی اڑیل لوگ نہیں ہیں کہ لوگ کو جو مرضی سمجھنے دو. نہیں, مشن جیوپرٹائز ہو رہا نہیں ہو رہا. اگر مشن جیوپرٹائز نہیں ہو رہا تو کیا پرابلم ہے؟ لوگ ہی کنسیڈریشن لے لیتے ہیں, بیکاز آفٹر آل مشن کہاں پہنچاؤ گے؟ ہم لوگوں تک پہنچاؤ گے نا. اگر وہ انایکسپٹیبل ہو جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ مگر دیٹ ڈزنٹ مین کہ اس کا مطلب میں مشن کو میں واٹر ڈاؤن کر دوں گا. اگر آپ آج چار نیم ہٹا دو, دیکھو اس کے اندر کیسی بھیڑ آتی ہے, بٹ ایک ہٹا کے دیکھو بس, اب زیادہ مت ہٹاؤ, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو کیا کریں, ہٹا دو باکس کو پلے. تو یہ ہے, تو دیٹ ٹریڈنگ دیٹ لائن, یہ ججمنٹ جو ہے جو اس وقت وہاں پر لیڈرشپ میں ہے, یہ اس کی کال ہوتی. یہ کتاب نہیں لکھ کے دے گی, یہ کتاب سے آپ کو سمجھ کے آئی ہے, وہ وہاں پریکٹس آپ کا جو ہے وہ نکل کے آئے گا. دیٹ از واکس پاپولائی کا اوپینین. آپ کیسے لیتے کیسے نہیں لیتے, لوگ کیا کہہ رہے, تم وی آر, ہم ٹرینڈس کو استعمال کرتے بھگوان کی سیوا میں, ٹرینڈس کے وشیبھوت نہیں ہو جاتے کہ جی لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ آج کچھ کہہ رہے, کل کچھ اور کہیں گے, پھر کیا کہیں گے. دیٹس وائی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کا کہنے میں دم ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. اف دے ہیو بٹ سبسٹینس, اٹ ہیز ٹو بی کنسیڈرڈ.
जैसे लोगों में तो हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस रहता है,
नहीं तो मैं कह रहा हूँ तो आपको ये देखा जाता है कि आपके आपके एग्जीक्यूशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए और सबके लिए भला भले के लिए क्या है, कौन सा ओपिनियन है, वाई नॉट? वॉक्स पॉपुलाई तो 60s में ये था, चांस पे गए हैं, प्रॉपर वाज द ओनली वन, बोलते रहे नहीं गए।
अभी दूसरा प्रश्न जैसे ये तो हो गया कि लोग क्या कहते हैं,
और इसमें एक चीज बड़ा जरूरी है कि लोग क्या कहते हैं। लोगों को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, लोगों को तो आपने 300 साल इन चक्कर में डाल दिया था जी, अमेरिका इंडिया है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने बोल दिया था, तो बाद में निकल के आए। तो अगर 300 साल तक पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाया जा सकता है, या पहले यह बताया जा सकता है कि जी ब्रेन जो है वो ब्लड कूलिंग मशीन है, तो लोगों की ओपिनियन को तो टैंपर करना सबसे सा मीडिया का काम क्या है, लोगों की ओपिनियन टैंपर करना। तो जब हम कहते हैं लोगों की ओपिनियन क्या है, उसके तो बड़े फैक्टर्स होते हैं, उनकी ओपिनियन होती कुछ नहीं है, कई जगहों पर उनकी ओपिनियन किराए की होती है, टीआरपी से ओपिनियन बनता है। किस लोग, जब आप वॉक्स पॉपुलर, जब आप किसी के मत की बात करते हैं तो किसकी बात, जाहिर के मत की बात या एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदे की मत की बात, कि जो सोच सकता है अपने दिमाग से, तो पर्सन उसकी अपनी राय है। एक बंदा है मेजोरिटी मान, जो जिसके सर पे छत अपनी नहीं है, पैरों तले जमीन अपनी नहीं है, उसकी राय अपनी कैसे हो सकती है, मुझे बताओ। तो जब आप ओपिनियन की बात करते हैं, वो तो पहले ही होस्टेज है कई चीजों के, लोगों की राय उसके अपने फायदे के हिसाब से होती है। लोगों की राय आज अगर आप बोल दो जी टैक्स हटा दो, सारे आपके तरफ हो जाएंगे, कर हटा दे टैक्स, लोगों की राय, लोगों की बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो इसीलिए लोगों की राय क्या है, ये तो उतना आप देख सकते हैं कि जो आपका मिशन जेपर्डाइज दम, और वो लोगों के भले के लिए। लोग कैसे होते हैं, पॉपुलेशन बच्चे जैसी होती है, लीडरशिप माँ बाप जैसी होती है। बच्चे की ओपिनियन होती है अलग अलग तरह की, मुझे को ये खाना ये दे दो वो कर दो, आप उसको पैम्पर करके बर्बाद कर दें, आप जैसा वो कह रहा है वैसा करो, या ये देखे कि उसको इस तरीके से भी ना खींच दें कि वो घोड़ा घोड़ा जो है इतना पीट दो उसको बेलगाम हो जाए, और इतना भी नहीं हो कि जो ऐसे ही छोड़ दो उसको। तो दोनों चीज, ये लीडरशिप का काम है। लीडरशिप का मतलब ये है जो डिवोट जो वहां पर उस वक्त प्रीच कर रहे हैं, जो उस मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका काम है ये चीज देखना कि लोगों की कंसिडरेशन में कितना दम है, उसको एवेल्युएट कौन करेगा। लोगों की राय जो है वो, जब मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं रिजेक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि लोगों की राय है या मेरी एवेल्युएशन है उसके अंदर। सो जिन्होंने भी एवेल्युएट किया, चाहे महाप्रभु ने किया, आप उसकी परंपरा में पहले बाद में जब भी, वो एवेल्युएशन हमारी होती है, राय लोगों की हो सकती है, और उस एवेल्युएशन का, और हमारा एवेल्युएशन ब्रॉड होगा इस पे कि आपकी टॉलरेंस कितनी है, आप कितने वैराइड ओपिनियंस को ले सकते हो, एकोमोडेट कर सकते हो, यही तो बात हो रही है। नॉट दैट कि मेरा अपना एक एजेंडा है वो मुझे पुश करना है, लोगों की राय का ही तेल लेना, नहीं इस तरह नहीं, तो फिर वो फिर एक्सेप्ट भी नहीं होगा। अगर आप प्रीचर जो है, अगर उस तरीके से उस एक्सपर्टीज के साथ प्रीच नहीं कर सका, तो ना प्रीचर एक्सेप्ट होगा ना उसका मैसेज एक्सेप्ट होगा, दोनों चीजें। मगर अब वो पॉपुलिस्ट नहीं हो सकता कि जी हाँ लोग क्या कह रहे हैं वैसे ही कर लो जी जैसे वो कह रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। आज लोगों का जो माइंड सेट है वो बिल्कुल माइंड जैसा होता है, आज जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहा होगा कल उसी को रिजेक्ट कर रहा होगा। दैट्स वाई वी कैनॉट, दैट इज नॉट अ कॉर्नर स्टोर प्रिंसिपल, दैट्स अ कंसिडरेशन, दैट्स अ कंसिडरेशन। जब आप टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस जैसे है, वो एक चीज है जो हर हर आपके फैसले में, हर आपके जजमेंट में उसका जो है एक एलिमेंट होता है, बट वो अपने आप में प्रिंसिपल नहीं है।
तो इसमें एक तो हो गया लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद होता है कि जो भक्त समाज में लोग हैं।
नहीं नहीं नहीं, दैट इज डिवोटीज, दैट्स अ लिटिल। भक्त समाज का मतलब है कि देन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दे आर एजुकेटेड स्पिरिचुअली एनलाइटेंड। भक्त समाज का मतलब वही नहीं कि वो इस कौन के इस क्या कहते हैं दीवार के अंदर आ गए तो भक्त समाज हो गए, वो जो चाइल्ड कॉम है पूरी आई हुई है, उनकी बात नहीं हो रही। जिनका कोई क्लास है, कोई कैलिबर है, उनकी बात हो रही, जो ओपिनियन दे सकते हैं, जिनसे आप ओपिनियन मांग सकते हो, उसकी ओपिनियन जिसकी जिसको समझ बूझ है उस चीज की, जिसको कुछ पता पता कुछ नहीं है, उसकी ओपिनियन क्या है, क्या करोगे? जब ऐसे लोगों की आप ओपिनियन लेते हैं जिनको उस चीज के बारे में समझ बूझ नहीं है, तो टोटल कंफ्यूजन फैलता है। मिसाल के तौर पर डेमोक्रेसी है जिस भी कंट्री में, क्यों गाली दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि वहां पर एक बंदा जो PhD है उसका भी एक वोट है और एक अंगूठा छाप उसका भी एक वोट है, ये क्या तमाशा है? और अंगूठा छाप की जो है तादाद ज्यादा है तो वो फैसला कर देगा, और वो जो एजुकेटेड लॉट है वो चुप रह जाएगा। इसीलिए जब आप राय लेते हैं एजुकेटेड लॉट, जब भक्तों की बात कर रहे हैं तो वो भक्त सर्टन कैलिबर, नॉट दैट एनी टॉम डिक एंड हैरी एंड स्टार्ट्स कम एंड स्टार्ट टेलिंग यू व्हाट यू शुड बी डूइंग।
तीसरा कि प्रसाद ने बताया कि वो जब भक्त है अलग ऐसे वरिष्ठ भक्तों के, अध्यात्म गुरु के, शास्त्रों की, सबकी ओपिनियन लेगा और उसका अपना एक जजमेंट होगा या अपना एक वैल्यूएशन,
उसके नतीजे में उसका अपना जजमेंट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जब वो एग्जीक्यूट करेगा और ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तो वही नहीं बोल सकता जी उस भक्त ने मेरे को बोला था, उस शास्त्र में लिखा था, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा था उसके इंप्लीकेशन क्या था। तो इस वजह से ही हैज हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, अंडरस्टैंडिंग उसकी। मैं ये नहीं कह रहा उसका बेसिस क्या, बेसिस तो बता दिया मैंने, बेसिस के बाद भी अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल उसी तरीके से है। जब आप कुक करने जाते हो तो दूध गाय का होता है, चीनी गन्ने का होता है, पानी नदी का होता है, आग गैस आग वहां की होती है, सिलेंडर की होती है, मगर बनाया हुआ आपका होता है। अब वो कम ज्यादा हो जाए तो आप नहीं बोलोगे चीनी कम मीठी थी, गैस कच्ची थी और पानी ठीक नहीं था और दूध जो है मिलावटी था, वो भी आपका था। ये बात है। इसी तरीके से जब भगवत धाम जाता है तो वो जीवात्मा जाता है। वो कैसे जाता है? वो इन चीजों के सहारों से जाता है, फिर भी जाता जीवात्मा है। मदद इन चीजों की ली जाती है। ये नहीं है कि गुरु ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया और शास्त्र ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया और ये दिया तो इंस्ट्रक्शन भगवत धाम जा रही, नहीं, इंस्ट्रक्शन पालन करने वाला जाए। उसी तरीके से जब मैं किसी चीज को इकट्ठा करता हूं तो वो मेरे फायदे के लिए हो रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूं। अगर उसका फायदा मुझे मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भी मैं हूं। इस तरीके से वो बात, आप हर चीज को कंसिडर करते हैं, लाते हैं, उनकी वैलिड ओपिनियंस होती हैं, रिजल्ट फिर आप, जैसे मैं यहां पर बता रहा हूं कोई बात तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी मैं जिम्मेदार हूँ। मैं नहीं बोल सकता जी ये किताब में लिखी हुई है ऐसे करके, भाई तुमने बोली है और तुम्हारी बोलने की वजह से ये अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी है, तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और अगर तुम कहते हो कि नहीं किताब ये बोल रही है, भगवान ये बोल रहे, तो तुम्हारे बीच में से मैं पढ़ लूंगा किताब, क्योंकि आप मीडियम हो मेरे लिए उस किताब को लाने के, आप मीडियम हो परंपरा के, सो आपका वो ओनस आपके ऊपर है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वह जजमेंट जो है आपकी मानी जाएगी। उसका बेसिस हो सकता है, जैसे आप एक किताब लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी होती है उसके अंदर, बिब्लियोग्राफी में सारा है कि कहां से क्या सोर्स है क्या नहीं, बट फिर भी किताब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथर की। आप ये नहीं कह सकते किताब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोट्स, नो, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द कोट्स विच ही हैज अंडरस्टूड एंड एम्प्लाइड, उस तरह तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। क्रेडिट उनको है, इट्स नॉट ए क्रेडिट, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग वेरियसली क्रेडिट में रहा नहीं, अंडरस्टैंडिंग के जो फैक्टर्स है क्रेडिट उसको। तो इस तरीके से मेरा क्रेडिट अगर कुछ है तो ज्यादा से ज्यादा उन अंडरस्टैंडिंग्स को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने का हो सकता है, समझने का हो सकता है, उतना क्रेडिट में। तो कई बार चीजें, बहुत अच्छा सवाल, कई बार बहुत उल्टी सीधी तरीके से वो हो जाती है कि जी ये गुरु का है तो कि गुरु के मत्थे मार दो फिर, इस तरह नहीं। अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, नहीं तो फिर आप ठेकेदार हो तो बीच में ये मतलब सेटिस्फाई नहीं हो। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की स्थित भक्त वृंद की किताई गोष्ठनाथ प्रेमानंद है।